namasitevya. Om namasitevya. Om namasitevya. Om shuddhatmane namaha. Namo arihantanam. Namo siddhanam. Namo ayariyanam. Namo vachayanam. Namo loe sauvasahunam. Jeniya kasaya pahuda. Manayanaya mujjalam anantatham. Gaha hi vivariyam tam. गुणहर भणारयम् वंदे। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। दूसरी पुस्तक द्वितीय अर्थाधिकार, जो प्रकृति विभक्ति नाम का है, उसमें हम मूल प्रकृति विभक्ति को देखते हुए पृष्ठ संख्या 67 पर आगे 67 यहाँ स्पर्शन के विषय में मार्गणाओं में बात चल रही थी। नरक गति में, तिर्यंच गति में, मनुष्य गति में और देव गति में हमने देख लिया था। अब उसका विशेषार्थ यहाँ देख रहे हैं। पहले पहले सामान्यपने देवों में क्या क्षेत्र होता है उसकी बात की, और भवन वासियों में आदि जो अलग अलग बात है वो बताने जा रहे हैं। कल हमने देखा था कि भवनवासी, वानव्यंतर और ज्योतिषी देवों ने कितना स्पर्श क्षेत्र स्पर्श किया है, तो उसमें तीन अलग अलग विकल्प बताए थे, चार बताए थे ना कि तीन चार। लोक का असंख्यातवा भाग, कुछ कम 3.5/14 राजू, कुछ कम 8/14 राजू और कुछ कम 9/14 राजू। इसका विशेषार्थ अब बताने जा रहे हैं। उक्त तीनों प्रकार के देवों ने वर्तमान काल में संभव सभी पदों की अपेक्षा लोक का असंख्यातवा भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। उनमें जो पद संभव है, जैसे उनमें तेजस, आहारक, केवली आदि तो नहीं होते, तो जो संभव है उनकी बात है। अतीत काल में, यानी यहाँ तो मारणांतिक और वो उपपाद भी समझना, उसके भी अपेक्षा लोक का असंख्यातवा भाग ही होता है। अतीत काल में स्वस्थान, स्वस्थान और उपपाद पद की अपेक्षा लोक का असंख्यातवा भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि ये जो भवनत्रिक है तो मध्य लोक से नजदीक है ना, तो उपपाद की अपेक्षा भी लोक का असंख्यातवा भाग ही घटित होता है। विहारवत स्वस्थान, अभी विहार करके जा सकते हैं उसकी अपेक्षा, वेदना, कषाय और वैकृत पदों की अपेक्षा अपने आपने स्वयं गमन करे तो देशों ने 3.5/14 राजू। ये सब जगह बटे ही हो गया, बटे का और पर प्रयोग से देशों ने 8/14 राजू प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। उसका कारण बताते हैं कि भवनत्रिक देव स्वयं विहार करते हुए ऊपर सौधर्म ऐशान कल्प तक और नीचे तीसरे नरक तक जाते हैं, तथा यदि कोई ऊपर का देव ले जाए तो ऊपर अच्युत कल्प तक जा सकते हैं। ऊपर के देव अकेले जाए तो उनके साथ ये जा सकते हैं। इस प्रकार स्व प्रयोग से, उसको कहते हैं स्व प्रयोग, स्वयं गमन करके जाए तो देशों ने 3.5/14 राजू। ये देशों ने क्यों कहा? हाँ, तीसरे नरक में जाएंगे तो तीसरे नरक का जो नीचे का पटल है वो तो पृथ्वी है, उसके नीचे से 1000 योजन छोड़कर ऊपर उसके बिल होते हैं, इसलिए उसको देशों ने कहा। और पर प्रयोग से यानी कोई अन्य देव ले जाए ऊपर के, तो देशों ने 8/14 राजू क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि नीचे स्वयं 2 राजू गए हैं और ऊपर 6 राजू जाएंगे अन्य देवों के साथ। समुद्घात की अपेक्षा देशों ने 9/14 राजू प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। कौन सा समुद्घात? मारणांतिक। यहाँ 9 राजू से ऊपर 7 राजू और नीचे 2 राजू क्षेत्र लेना चाहिए। यानी कोई समझेगी कि नीचे के पृथ्वी में जन्म लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ऊपर के ही पृथ्वी में जन्म लेते हैं। सानत कुमार स्वर्ग से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के, ये सानत कुमार कितने नंबर का है? 3रा। और सहस्रार, हाँ, मोनीय विभक्ति वाले देवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? लोक का असंख्यात भाग, देशों ने 8/14 राजू प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। विशेषार्थ, सानत कुमार से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों ने वर्तमान काल में लोक का असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। अतीत काल में स्वस्थान स्वस्थान की अपेक्षा लोक का असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। स्वस्थान यानी उनका रहने का जो विमान है वो कितना है, तो लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में है। विहारवत स्वस्थान, अभी विहार करके मध्य लोक में भी आएंगे, नीचे भी जाएंगे, तो विहारवत स्वस्थान वेदना कषाय वैक्रिक और मारणांतिक पदों की अपेक्षा देशों ने 8/14 भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। इनका नीचे 3रे नरक तक और ऊपर अच्युत कल्प तक आना जाना देखा जाता है। ये स्वयं जा सकते हैं। पहले भवनत्रिक में तो देखा था कि अन्य देव ले जाए तो जाते हैं, और स्वयं जाए तो सौधर्म ईशान तक जाते हैं। उपपाद पद की अपेक्षा, तो सनत कुमार महेंद्र में कौन जन्मेंगे? उपपाद यानी जन्म, हाँ, मनुष्य और तीर्यंच, ये सारे भोग भूमि वाले जाएंगे कि नहीं जाएंगे वहां? सौदर में ईशान तक ही जाते हैं। हाँ, हम हमारी बात सनत कुमार की चल रही। हाँ, बराबर है, सनत कुमार महेंद्र में वे नहीं जाते। कौन जा सकेंगे? यानी खाली ढाई द्वीप में से जाएंगे कि बाहर के कोई जाएंगे? हाँ, वो स्वयंभू रमण जो है, वो सारा जो एरिया बड़ा, वहां से भी जाएंगे। हाँ, पंचम गुण स्थान तक है ना वहां पर। उपपाद पद की अपेक्षा सानत कुमार महेंद्र कल्पवासी देवों ने देशों ने 3/14 राजू, क्योंकि 3 राजू तक है उनके विमान, इसलिए 3/14 का है उपपाद की अपेक्षा। क्योंकि तीर्यंच जन्मेंगे तो भी पहले आड़े आए और फिर ऊपर चले गए, तो 3 राजू तक ऊपर चले गए। सनत कुमार महेंद्र का अंतिम पटल है, वो 3 राजू ऊपर तक है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कल्पवासी देवों ने देशों ने 3/14 राजू कौमा लगाना। लांतव कापिष्ट कल्पवासी देवों ने देशों ने 4/14 राजू। शुक्र महाशुक्र कल्पवासी देवों ने देशों ने 4.5/14 राजू। ये आधा आधा राजू अधिक ऊपर तक हो रहा है। शतार सहस्रार कल्पवासी देवों ने देशों ने 5/14 राजू प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। आनत प्राणत और आरण अच्युत कल्पवासी मोहनीय विभक्ति वाले देवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? लोक का असंख्यात भाग, ये स्वस्थान की अपेक्षा। फिर देशों ने 6/14 राजू प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। विशेषार्थ, उक्त कल्पवासी देवों ने वर्तमान काल में संभव सभी पदों की अपेक्षा लोक का असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है, तथा अतीत काल में स्वस्थान स्वस्थान की अपेक्षा लोक का असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। विहारवत स्वस्थान वेदना कषाय वैकिरिक और मारणांतिक पदों की अपेक्षा देशों ने 6/14 राजु प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। उसका कारण बताते हैं, क्योंकि आनतादि देवों का, आनतादि यानी आनत प्राणत आरण और अच्युत 13, 14, 15, 16 देवों का चित्रा पृथ्वी के ऊपर के तल से नीचे गमन नहीं पाया जाता। चित्रा पृथ्वी कौन सी है? जिस पर हम रहते ऊपर, तो मध्यलोक तो उनका गमन है मध्यलोक तक, परंतु उस पृथ्वी के नीचे नहीं जाते। जैसे अन्य देव नीचे तीसरे नरक तक जाते हैं, कहाँ तक के? सहस्रार तक के। इसलिए वहां नीचे 2 राजे और ऊपर 6 राजू बताए थे। अब इनका नीचे गमन नहीं होता उससे, तो इस पृथ्वी के ऊपर ही ले लेना, तो ऊपर 6 राजू तक है। उपपाद की हाँ ऐसा आता है, वो प्राणत में है ना, प्राणत में है हाँ ना, वो जाते हैं रावण को संबोधन करते हैं, ऐसा आता है, हम बताते भी है। हाँ ये प्रश्न हमने भी पहले उठाया था। हाँ उपपाद की अपेक्षा आनत प्राणत कल्पवासी देवों ने कुछ कम 5/14 राजू और आरण अच्युत कल्पवासी देवों ने, देखो जब विहार की अपेक्षा तो 6 राजू लिया, क्योंकि वे ऊपर भी गमन करते हैं ना 16वें स्वर्ग तक, परंतु उपपाद तो अपने अपने विमान में होगा, तो उपपाद की अपेक्षा आनत प्राणत वालों के 5.5 राजू बताया। तो आनत प्राणत देवों ने कुछ कम 5/14 राजू और आरण अच्युत कल्पवासी देवों ने कुछ कम 6/14 राजू प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि मध्यलोक से आनत प्राणत कल्प 5.5 राजू और आरण अच्युत कल्प 6 राजू है। इतनी बात समझ में आई ना, कैसे कैलकुलेट करना है? जब हम वर्तमान क्षेत्र कहते हैं तो वर्तमान में जीव थोड़े हैं, और जहां रहने का ठिकाना है वहां तो लोक का असंख्यातवा भाग होता है। विहार करके जाए तो भी वो उतना ही रहता है, परंतु यहाँ अतीत काल की अपेक्षा अगर हम देखते हैं, उपपाद की भी अपेक्षा लेते हैं, तो अपना अपना जितना नीचे से भूमि से जितना ऊपर है उनका, उतना पूरा क्षेत्र ले लेना, क्योंकि कोई ना कोई जीव कहीं ना कहीं से वहां जन्मा है, इसलिए उसको ले लेना। आप कहेंगे बीच के समुद्रों में तो वो जघन्य भोगभूमि होगी, उस क्षेत्र में से कोई जाएगा कि नहीं जाएगा? और मैं कहूं जाएगा तो हाँ, कोई देव आके उठा के उनको पटक देता है बीच में, हाँ वहां के क्षेत्र से कोई जाएगा कि नहीं? तो वहां क्योंकि हमने पूरा ही एरिया ले लिया ना, एक राजू वाला इतना पूरा एरिया ले लिया है, तो जैसे मनुष्यों को तो ढाई कोई उठाकर भी 2.5 द्वीप के बाहर नहीं ले जा सकता, परंतु बाहर के तीर्यंचों को तो वहां कहीं में किसी भी तीर्यंच को कहीं भी डाल सकता है, उस अपेक्षा से ले सकते हैं हम। जैसे सिद्ध यहां से 2.5 द्वीप में से हर जगह में से सिद्ध होते, ऐसा कहा किस अपेक्षा से? कोई देव उठाकर ले जाता है और वहां कहीं भी पटक देता है इस तरह। वैसे वहां तीर्यंचों को भी उठा के समुद्र में भी डाल दे कोई, पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों में, मोहनीय विभक्ति वाले जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? जब पंचेंद्रिय कहेंगे तो मनुष्य तीर्यंच देवनार के पंचेंद्रिय सभी उसमें आ गए, तो कहते हैं लोक का असंख्यातवा भाग, त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और सर्वलोक क्षेत्र स्पर्श किया है। ये सर्वलोक कैसे लेना है? हाँ मारणांतिक और उपपाद की अपेक्षा लेना उसमें, तथा मोहनीय अविभक्ति वाले पंचेंद्रिय में मोहनीय के अविभक्ति वाले उक्त जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? तो ओग के समान स्पर्श किया है। कितना कहेंगे? 3 विकल्प, लोक का असंख्यातवा भाग, फिर बहुभाग और पूरा लोक। क्योंकि अविभक्ति वाले में 12वें भी है, 13वें भी है, 14वें भी। इसी प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, चक्षु दर्शनी और संगी जीवों के कहना चाहिए। पांचों मनोयोगियों में मनोयोगी है पांचों और विभक्ति वाले हैं, तो कितना क्षेत्र स्पर्श करेंगे? लोक का विभक्ति वाले, हाँ, और विभक्ति अविभक्ति वाले वो भी लोग, क्योंकि 12वां गुण स्थान ही लेना है, वहां तो केवली समुदात नहीं किया। इतनी विशेषता है कि इन पांचों मनोयोगी आदि जीवों के मोहनीय अविभक्ति की अपेक्षा स्पर्शन चाहिए, स्पर्शक हुआ है, स्पर्शन कहो या स्पर्श कहो, स्पर्श लिखा है सर्व जगह उन्होंने, वो क निकाल देना। मोहनीय अविभक्ति अपेक्षा स्पर्श क्षेत्र के समान है। कौन सा, क्या समानता है? लोक का असंख्यात अभाव। विशेषार्थ, पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्तों में मोह विभक्ति वाले जीवों ने वर्तमान में संभव सभी पदों की अपेक्षा लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। यानी भले वहां मारणांतिक भी ले ले तो भी उसका लोक का असंख्यात भाग ही होता है पंचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा। तथा अतीत काल में, ये वर्तमान काल की बात हो गई, अतीत काल में स्वस्थान स्वस्थान तेजस समुद्घात और आहारक समुद्घात की अपेक्षा लोक का असंख्यात भाग स्पर्श किया है। विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैक्रिक समुद्घात की अपेक्षा, ये समझ में आया तेजस और आहारक के लिए लोक का असंख्यात भाग क्यों कहा? तेजस और आहारक किसके होते हैं? समुद्घात मुनियों के होते हैं, और मुनियों के होते आहारक का तो अधिक से अधिक कितना, फिर वो ढाई द्वीप के अंदर ही होगा ना, और अपने अपने क्षेत्र में, और तेजस समुद्घात तो जहां वो स्थित है वहां से नव योजन तक जा सकेंगे, तो वो तो लोक का असंख्यात भाग ही हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीव ने किया है, फिर भी वो ढाई द्वीप कहेंगे तो लोक का असंख्यात भाग ही होता है। अब विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैक्रिक समुद्घात की अपेक्षा त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। क्योंकि यहाँ पंचेंद्रिय इतनी बात ली तो उसमें देव भी आए, तिरंच मनुष्य जो कुछ है, देव नारकी सब कुछ लेना है, इसलिए मारणांतिक की अपेक्षा और उपपाद की अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। क्योंकि उसका कारण बताते हैं, सूक्ष्म एकेंद्रियों में मारणांतिक समुद्घात करते हुए उक्त जीव सर्वलोक में पाए जाते हैं। वर्तमान काल में क्यों नहीं लिया फिर मारणांतिक समुद्घात पूरे लोक में? अतीत काल की अपेक्षा स्पर्श में ही पूरा लोक लिया है। हाँ, उनकी संख्या इतनी अल्प है, यानी असंख्यात में है ना, परंतु जब भूतकाल पूरा अनादि से लेते हैं तो कहीं ना कहीं सर्वत्र जन्मे हैं, मारणांतिक किया है, उस अपेक्षा क्षेत्र तो लोक का असंख्यात अभाग होता है और स्पर्शन पूरा लोक होता है। पंचेंद्रियों में से सूक्ष्म में जन्म लेने वाले लेना है। तो अभी वर्तमान एक समय में बात करेंगे तो जीवों की संख्या अल्प है, पंचेंद्रियों की पूरी संख्या लेंगे तो भी असंख्यात है, और उसका सब कैलकुलेशन करेंगे तो भी वो लोक का असंख्यात अभाग होगा, क्योंकि उतने समय में कितने जीव मरेंगे आवली के असंख्यात भाग में लगातार भी करेंगे ना। मारणांतिक समुद्घात कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मारणांतिक समुद्घात किया एक जीव ने तो एक समय के लिए नहीं करता है, वो तो आवली के असंख्यात भाग काल तक कोई ना कोई जीव उसमें करता रहेगा, तो उन सब का हम गिनेंगे एक साथ तो भी कितना हो जाएगा लोक का असंख्यात भाग। परंतु अतीत काल की अपेक्षा अगर बात करेंगे किसी न किसी जीव ने कहीं ना कहीं किया है, तो उसको सबको इन्हें पूरा लोक लेना पड़ेगा। इसलिए क्षेत्र में तो असंख्यात अभाग होता है लोक का, और स्पर्शन में पूरा लोक। हाँ, कोई कोई कर ही नहीं सकता ना, सोच समझ कर। इनका कहना है कि कोई सोच समझ कर मानांतिक समुदाय करते हुए ऐसी बात नहीं, वो तो एकेंद्रिय भी करते हैं, पंचेंद्रिय भी करते हैं, वो सहज रूप से ऐसी अवस्था होती है। और उसमें ऐसा भी हमने देखा, बहुभाग प्रमाण करते हैं, मानांतिक समुदाय करने वाले भी बहुभाग होते हैं, असंख्यात बहुभाग मानांतिक समुदाय करते हैं। पहले ऐसा हमने सुना था कि वो जगह देख कर आते हैं, इसलिए फिर हंसते हंसते जाता है। तो इतना छोटा काल है वो अंतर्मूर्त का। देखो, हमने अभी स्पर्श देखा था कि कुछ कम 8 भाग प्रमाण, 14 भागों में से। हाँ, मानातिक समुदाय उपवाद की अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्श किया, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रियों में मारणांतिक समुदाय करते हुए उक्त जीव सर्वलोक में पाए जाते हैं, तथा सूक्ष्म एकेंद्रियों में से पंचेंद्रियों में उत्पन्न होने वाले, इसको हम उपपाद कहेंगे, जीव पहले समय में समस्त लोक में पाए जाते हैं। मोह अविभक्ति वाले उक्त जीव, उक्त जीव ने पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस त्रस पर्याप्त, इनमें मोह की अभिव्यक्ति वाले जीव वर्तमान कालीन और अतीत कालीन स्पर्श ओघ के समान है। अतः ओघ प्ररूपणा में जो खुलासा किया है वह यहाँ समझ लेना चाहिए। मोह अविभक्ति और पंचेंद्रिय पर्याप्त या त्रस जो कुछ है, तो उसमें 12वें भी है, 13वें भी है और 14वें भी है, तो लोक का संख्या तो अभाग आदि उसमें भी लागू होगा। विशेष बात यह है कि ओघ प्ररूपणा में मोह अविभक्ति वाले जीवों में सिद्धों का भी ग्रहण किया है। ओघ में जब मोह के अविभक्ति वाले जीव कौन कौन है, सभी जीवों में अगर बात करेंगे, यहाँ तो मार्गणा में पंचेंद्रिय मार्गणा बता दी है, तो जब सामान्य से कहेंगे मोह के अविभक्ति वाले जीव कौन कौन से है, 12वें 13वें 14वें वाले और सिद्ध। और यहाँ हमें अभी क्राइटेरिया हमको बता दिया कि पंचेंद्रिय है या पंचेंद्रिय पर्याप्त है, तो इनमें तो सिद्धों को नहीं ले सकते हम, 14वें गुणस्थान तक के जीवों को इसमें हम ले लेंगे। पर यहाँ उनका ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे समस्त कर्मों से रहित होते हैं, अतः उनमें पंचेंद्रिय आदि व्यवहार नहीं होता। ये एकेंद्रिय आदि जो है वो व्यवहार है, वो जीव का लक्षण नहीं है, है? क्योंकि ये मार्गणाएं हैं, विशिष्ट जीवों का विभाजन है ना, जीव कितने प्रकार के हैं, तो एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनेंद्रिय, परंतु वो व्यवहार वचन है। मोहनीय विभक्ति वाले चक्षुदर्शनी और संगी जीवों का सभी पदों की अपेक्षा वर्तमान कालीन और अतीत कालीन स्पर्श पंचेंद्रियादि के समान है, क्योंकि चक्षुदर्शनी कौन हो गए, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, और फिर गुणस्थानों में कहना है तो 12वें गुणस्थान तक के जीव, और संगी भी 12वें तक, किंतु पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी जीवों के उपपाद पद नहीं होता। क्या कहा, चक्षुदर्शनी और संगी तो कहेंगे हम उनको, जब विग्रह गति में है, संगी में जन्मने जा रहा है, यानी अभी उसने चालू कर दिया उसकी आयु, तो उसको वहां चक्षुदर्शनी कहेंगे, क्योंकि वहां क्षोपशम है, भले चक्षुदर्शन रूप उपयोग हो या न हो, उपयोग की बात नहीं है, उसका क्षोपशम है वहां चक्षुदर्शन का, तो उसको चक्षुदर्शन ही कहेंगे। मन के द्वारा जानने का कार्य नहीं हो रहा है, फिर भी संगी कहेंगे, क्योंकि वो तो जीव उसकी बात है ना, संगी मार्गणा में उसको संगी कहेंगे, कब तक, 12वें गुणस्थान तक। परंतु वैसे 5 मनोयोग और 5 वचन योग अपर्याप्त अवस्था में नहीं होते, काय योगी तो कहलाएंगे, क्योंकि काय योग वहां पाया जाता है, परंतु मनोयोग और वचन योग पर्याप्ति पूरी होने के बाद चालू हो जाता है, इसलिए उनमें उपपादि, क्योंकि जन्म के पहले समय में ना मनोयोग है ना वचन योग है, वहाँ तो कोई योग अपना अपना मिश्र योग है, और बाद में अपना अपना का योग होगा, अपना अपने नहीं, किसी का वैकरिक है किसी का औदारिक है। अतः इनका शेष पदों की अपेक्षा दोनों प्रकार का स्पर्श पंचेंद्रियादि के समान ही है, पर पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी संगी और चक्षुदर्शनी जीवों में मोहनी अविभक्ति, ये कौन से गुणस्थान वाले की बात है, अभी बारहवें की, उन जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान लोक का असंख्यातवा भाग है, क्योंकि केवली समुद्घात में मनोयोग और वचन योग नहीं होता। तो केवली समुद्घात में कौन सा योग होता है? पहले कौन सा होता है? हाँ, फिर हाँ, और बाद में कारमा। तथा केवली संगी और असंगी दोनों प्रकार के व्यपदेश से रहित है, तथा चक्षुदर्शन बारहवें गुणस्थान तक ही होता है, अतः इनके लोक का असंख्यात बहुभाग और समस्त लोक स्पर्श नहीं बन सकता। ये संगी में सर्वलोक नहीं बन सकता, क्योंकि संगी तो हम बारहवें गुणस्थान तक कहीं, संगी मार्गणा की अपेक्षा संगी, संगी पंचेंद्रिय की वो जीव समास वाली बात नहीं हो रही है। हाँ, हम कौन सी अपेक्षा कौन सी मार्गणा की बात करते हैं उस प्रकार से सोचना चाहिए। अब स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीवों में मोहनीय विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग, त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग, और सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। इसी प्रकार विभंग ज्ञानियों के जान लेना चाहिए। अपगत वेदियों में मोहनीय विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है, अपगत वेदी है और मोहनीय के विभक्ति वाले हैं, तो कितना होगा? हाँ, लोक का संख्या तो भाग। कैसे? अपगत वेदी मोह की विभक्ति वाले हैं। हाँ, दोनों सोचने ना हमको। हाँ, तथा मोहनीय अविभक्ति वाले, अभी ये अविभक्ति वाले बता रहे, अपगत वेदी जीवों का स्पर्श ओघ के समान है, तो वहां असंख्यातवा भाग बहुभाग और पूरा लोक। इसी प्रकार अकषायी, अकषायी में कौन कौन लेने हैं? हाँ, ग्यारहवें से लेना है, ग्यारहवें वाले को विभक्ति वाले कहेंगे, और अकषायी अविभक्ति वाले बारहवें तेरहवें चौदहवें और सिद्ध, हाँ, सिद्धों को भी लेना उसमें। हाँ, यानी अकषायी अपगत वेदी ज्ञान दर्शन मार्गणा में ले लेंगे उनको। उपयोग में तो प्ररूपणा हो, हाँ वो प्ररूपणा हो जाएगी। अलेशा कहेंगे, अयोगी कहेंगे, कहेंगे हाँ बराबर। इसी प्रकार अकषायी संयत और यथाख्यात संयत जीवों में ये संयम भी कहाँ तक लेना है? सिद्धों को लेना कि नहीं? उसमें चौदहवे तक लेना। मोहनीय विभक्ति और मोहनीय अविभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन कहना चाहिए, इसी बात को विशेषार्थ में समझाएंगे। मोहनीय विभक्ति वाले स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवों ने वर्तमान काल में संभव सभी पदों की अपेक्षा और अतीत काल में स्वस्थान स्वस्थान तेजस समुद्घात और आहारक समुद्घात की अपेक्षा लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। तो स्त्री वेदी में तेजस समुद्घात आहार समुद्घात होगा? नहीं होगा। हाँ, पुरुष वेदी में होता है। इतनी विशेषता है कि ये लिखा है आगे देखो, स्त्री वेदी जीवों के तेजस और आहारक समुद्घात नहीं होता, तथा विहार व स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैक्रियक समुद्घात की अपेक्षा त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। जैसे हमने पहले देव जाते हैं नीचे दो राजू तक और ऊपर छह राजू तक, उसकी अपेक्षा 8/14 का पुरुष वेदी और स्त्री वेदी इतना ही लेना है। उसमें मनुष्य तिर्यंच देव सभी आ गए और मारणांतिक समुद्घात तथा उपपाद की अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। क्योंकि अभी केवल देवों की बात नहीं सोचनी है, मारणांतिक करके कहीं भी अभी स्त्री वेदी पुरुष वेदी मनुष्य भी होते तिर्यंच भी होते कहीं भी जन्मेंगे पूरे लोक में, मारणांतिक भी करेंगे और कहीं से भी उनमें जन्म लेंगे तो उपपाद भी घटित होगा, तो स्पर्शन पूरा लोक हो सकता है। विभंग ज्ञानियों के स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना कषाय वैक्रिक और मारणांतिक समुद्घात ये 6 पद होते हैं। इसमें उपपाद होगा कि नहीं होगा? विभंग ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता तो इसमें उपपाद वाला पद नहीं है। तो मारणांतिक कर सकते कि नहीं कर सकते? वो तो विभंग ज्ञानियों के मारणांतिक होगा। स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवों के इन 6 पदों की अपेक्षा जिस प्रकार वर्तमान और अतीत कालीन स्पर्श कहा है उसी प्रकार विभंग ज्ञानियों के जानना चाहिए। क्योंकि विभंग ज्ञानियों में भी पूरा लोग जो मारणांतिक की अपेक्षा कहे आए हैं, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है ना विभंग ज्ञानी, तो मरकर सूक्ष्म में जा सकते हैं। अवधि ज्ञानी में पूरा लोक होगा कि नहीं होगा? वो तो सूक्ष्म में जन्म नहीं लेंगे, विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टि है उसका तो पूरे लोक में होगा। अपगत वेदियों में मोहनीय विभक्ति वाले जीव 11वें गुणस्थान तक होते हैं। अपगत वेदी और विभक्ति वाले तो 9वें का उर्वरित भाग 10वां और 11वां ये विभक्ति वाले हो गए। जिनका वर्तमान और अतीत कालीन स्पर्श संभव पदों की अपेक्षा लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही है तथा मोहनीय अविभक्ति वाले जीवों का दोनों प्रकार का स्पर्श ओघ के समान है, अतः ओघ प्ररूपना के समय जो खुलासा कर आए हैं उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिए। इसमें कोई विशेषता नहीं है। दोनों प्रकार का स्पर्श है कौन सा? हाँ, वर्तमान कालीन और अतीत कालीन। वर्तमान कालीन स्पर्श को हम क्षेत्र कहते हैं और अतीत कालीन को उसको अलग से स्पर्श नाम, वो तो त्रिकाल कालीन है, तीनों काल को विषय करने वाला है। इसमें कोई विशेषता नहीं है। यानी अविभक्ति वाले किसमें बात चल रही है? अपगत वेदी में और अविभक्ति वाले। तो कौन कौन से लेना जीव? 12वें 13वें 14वें और सिद्ध। अकषाय आदि जीवों का मोहनीय विभक्ति और मोहनीय अविभक्ति की अपेक्षा वर्तमान और अतीत कालीन स्पर्श अपगत वेदियों के समान है। पदों की अपेक्षा जो विशेषता हो उसे यथायोग्य जान लेना चाहिए। पद हमने कौन से कहा कितने घटित होते हैं वो बहुत विस्तार से देखे भी, उसके कोष्टक भी देखे थे। अब मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी ये कौन से जीव है? 4थे से ऊपर। कहाँ तक? 12वें तक है। उसमें मोहनीय विभक्ति वाले कितने कहाँ तक है? 4थे से 11वें तक। हाँ, तो मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानियों में मोहनीय विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? तो लोक के असंख्यात विभाग कहाँ कहाँ है, ये सारे जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? हाँ, स्वर्ग में भी है, नरकों में भी है, देव में भी है, मनुष्य में भी है, तिर्यंच में भी, मध्य लोक में भी। हाँ, फिर भी वो लोक का असंख्यात भाग है, असंख्यात जीव है और उनका अपना अपना रहने का ठिकाना भी देखेंगे तो लोक का असंख्यात भाग। लोक के असंख्यातवे भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। कुछ कम जब हम देखते हैं ना विहार करके जाते हैं तो उसमें वो तो नीचे 2 राजू और ऊपर 6 राजू तक देखते हैं, परंतु यहाँ तो श्रुतज्ञानी अवधिज्ञानी वो जो है मोहिनी की विभक्ति वाले वो सर्वार सिद्धि तक के देव भी है, परंतु उनका अपना अपना रहने का एरिया अगर लेके या जीवों की अवगाहना को उनकी संख्या से गुना करेंगे तो कितना होगा उसका यहाँ प्रमाण निकालना है। सातवें नरक को क्यों छोड़ना? अरे सातवें नरक तक असंख्यात जीव है, सम्यक दृष्टि सबको लेना है, मति श्रुता अवधिज्ञानी ये क्राइटेरिया अपना। मोहनी आप घोटाले बहुत कर रहे हैं, मानांति कहां तक करेंगे? वो नवराजू होगा कि नहीं उनका? नवराजू किसी का होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? समय दृष्टियों की बात चल रही है ना। देखो हम पढ़ेंगे पूरा, फिर विशेषार्थ भी देखेंगे। लोक के असंख्यात विभाग त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया। जब यहाँ ऐसा कहते हैं तो मेजोरिटी जीवों की अपेक्षा से वो कैलकुलेट करते हैं। तथा मोहनीय अविभक्ति वाले उक्त जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। ये मोहनीय अविभक्ति वाले अभी 4 गति में से केवल एक मनुष्य में ही हो गए ना, 12वें गुण स्थान वाले। और फिर मति श्रुता अवधि है तो समुद्घात केवली समुद्घात लेना कि नहीं लेना उसमें? इसी प्रकार अवधि दर्शनी जीवों के स्पर्शन कहना चाहिए। क्या लाया? विशेषार्थ। इनके केवली समुद्घात को छोड़कर शेष 9 पद होते हैं। उनमें से मोहनीय विभक्ति वाले जीवों के मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा अतीतकालीन स्पर्श त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण है। शेष सभी पदों की अपेक्षा वर्तमान और अतीतकालीन स्पर्शन तथा मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा वर्तमानकालीन स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही है। मोहनीय विभक्ति और मोहनीय अविभक्ति अपेक्षा इसमें कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि वो भी लोक का असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में है। पर मोहनीय अविभक्ति वाले उक्त जीवों के एक स्वस्थान स्वस्थान पद ही होता है, शेष नहीं। यानी उनके जो मोहनीय अविभक्ति वाले हैं ना, किसमें? मति श्रुता अवधि और मोहनीय की अविभक्ति 12वें गुणस्थान वाले हैं। उपपाद होगा क्या? मारणांतिक विक्रिया तो करेंगे वेदना कषाय विहार भी नहीं, तो कौन सा रह गया अभी? एक स्वस्थान स्वस्थान ही होगा। तेजस आहारक का भी कोई सवाल नहीं है, ना केवली समुद्घात का। तो 10 पदों में से यहाँ मात्र एक स्वस्थान नाम का पद है। संयता संयत में 5वां गुणस्थान, ये विभक्ति वाले के अविभक्ति वाले बहन? विभक्ति वाले। मोहिनी विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। विशेषार्थ। अतीत काल में मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा संयता संयतों ने त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है, क्योंकि देखो यहाँ स्पर्श लिखा है। संयता संयत तिर्यंच और मनुष्य जीव, तिर्यंच भी हो, 5वें गुणस्थान वर्ती तिर्यंच हो या मनुष्य हो, वे अच्युत कल्प तक मारणांतिक समुद्घात करते हुए पाए जाते। यानी वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? अच्युत कौन सा स्वर्ग है? 16वें स्वर्ग तक। नहीं, मगर ये ऊपर जा ही नहीं सकते, संयता संयत है, उनकी लिमिट कहाँ तक उत्पन्न होंगे वे? यहाँ तीरेंच और मनुष्यों को लिया ना, इनका कहना है कि संयता संयत होगा और द्रव्यलिंगी हो गए तो ऊपर ग्रैवेक में भी जा सकते हैं, तो वहां मारणांतिक नहीं करते, वो बात है। शेष सभी प्रकार का स्पर्श लोक के असंख्यात्व भाग प्रमाण है, ये भी संयम मार्गणा हो गए उनके। पीतलेशा में अभी यहां वो असंयत की संयत की बात नहीं, क्योंकि वो तो पहले आ चुकी है, असंयत है या मिथ्या दृष्टि है, नपुंसक वेदी है, तो पूरा लोक ही है उसका, क्योंकि एक इंद्रियों में असंयत नाम का वो है ना, वो सभी एक मिथ्या दृष्टि, वो सारे असंयत है, इसलिए अकेले यहां संयत असंयत की बात की। संयम में से जहां जो था वो पहले वो बता चुके हैं, अब लेशम की बात चल रही है। पीतलेशा में तो पीतलेशा वालों के कौन कौन से समुद्घात हो गए, केवली का होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ। हाँ, आहार क्यों नहीं होगा, तीन शुभलेशा है ना छठे वाले के। हाँ, पीतलेशा में सौधर्म के समान, पद्मलेशा में सहस्रार के समान और शुक्ललेशा में संयता संयतों के समान स्पर्शन है। क्यों? क्योंकि पीतलेशा वाले वो तो सौधर्म तक जाएंगे और वहां रहने वाले भी है, ऊपर सहस्रार तक तो पद्मलेशा है और ऊपर शुक्ललेशा है, नीचे भी है मध्यलोक में, मनुष्य तीरियंचों के भी पाई जाती है, परंतु उनका स्पर्शन उस समान घटित करना। तथा मोहनीय अविभक्ति वाले जीवों के शुक्ललेशा में, ये पीत और पद्म में अविभक्ति वाले हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, तो शुक्ललेशा में जब हम मोहनीय अविभक्ति कहेंगे तो गुणस्थान कौन कौन से है? हाँ, चौदवा वाला क्यों, योग नहीं ना, तो लेशा नहीं है। मोहनीय विभक्ति वाले सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों के, ये लेशा के बाद वो सम्यक तो मार्गणा ले ली उन्होंने। विभक्ति वाले सम्यक दृष्टि कहां तक? चार से कहां तक? ग्यारह तक। हाँ, तो मोहनीय विभक्ति वाले सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि कहां तक? वो भी क्षायिक कहां तक? विभक्ति वाले ग्यारहवें तक। हाँ, मति ज्ञानियों के समान स्पर्शन है, मति ज्ञानियों, क्योंकि वो भी मति ज्ञानियों ने सम्यक ज्ञानी की बात है ना, यहां सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, मार्गणा बदल गई है परंतु कथन वैसा ही होगा जैसे हमने मति ज्ञानियों में देखा था। तथा मोहनीय अविभक्ति वाले सम्य दृष्टि और क्षायिक सम्य दृष्टि जीवों के ओग के समान स्पर्शन है, तो मोहनीय अविभक्ति वाले सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्य दृष्टि, हाँ जयाबेन, वो गुणस्थान कौन कौन से हो गए? हाँ, और सिद्धों को लेना कि नहीं लेना? सम्यक दृष्टि कहेंगे तो भी लेना है, क्षायिक सम्य दृष्टि कहेंगे तो भी लेना है, सम्यक दृष्टि में क्षायिक सम्य दृष्टि आ ही जाते हैं, सामान्य से कथन करेंगे तो सम्य दृष्टि कहेंगे, और कौन सा सम्यक तो है कहेंगे तो क्षायिक कहेंगे, तो बारहवें तेरहवें चौदहवें और सिद्ध सब उसको ले लेना सबको। तो कैसा कहेंगे ओग के समान? लोक का असंख्यात भाग, बहुभाग और पूरा लोक समुद्घात की अपेक्षा। मोहनीय विभक्ति वाले वेदक सम्य दृष्टि जीव गुणस्थान, ये जरा नए लोगों को जरा सोचने दो ना, क्योंकि ये तो नए नए आ रहे हैं ना, हमने ये सारे मार्गणाए बहुत बार पढ़ चुके हैं। बोलो, क्षोभशम सम्य दर्शन कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक पाया जाता है? चौथे से सातवें तक। हाँ, अभी चौथे से सातवें है, कौन से कौन सी गतियां होगी? वेदक सम्यक तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन सी गतियों में? हाँ, तिर्यंच, मनुष्य और तिर्यंच, आप क्या कहते हैं? नारकी में भी है, सातवें की बात नहीं है, वेदक सम्यक तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? चारों गतियों में, चारों गति में। हाँ, तो अभी मोहनी विभक्ति वाले वेदक सम्यक दृष्टि जीवों का मति ज्ञानियों के समान स्पर्शन है, जैसे हमने देखा था लोक का असंख्यात भाग। तथा इसी प्रकार उपशम सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के स्पर्शन जानना चाहिए, तो उसमें कौन सा वाला नहीं होगा? हाँ, कौन सा पद नहीं होगा? मारणांतिक नहीं होगा और उपोपात भी नहीं होगा, क्योंकि मरण नहीं है, मारणांतिक समुद्घात नहीं है तीसरे गुण स्थान में, और उपशम सम्यक तो अवस्था में भी मरण नहीं होता। मोहनीय विभक्ति वाले सासादन सम्यक दृष्टियों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का, और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और कुछ कम 12 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। आठ भाग कैसे हो गए? मारणांतिक करके, हाँ, देव में जा सकते हैं, नरक में नहीं जा सकते। हाँ, हाँ, नरक में सासादन में मरण हो सकता है। कहाँ तक करेगा नरक में करने वाला? हम मध्य लोक में आए, और देव करेंगे तो कहाँ तक के देव सासादन में जा सकते हैं? ग्रैवेग तक के, ग्रैवेग तक मिथ्या दृष्टि जीव है, तो ग्रैवेगों में चारों ही गुणस्थान पॉसिबल है। ग्रैवेगों के ऊपर अनुदिश अनुत्तरों में तो एकमात्र चौथा गुणस्थान है, तो ग्रैवेग तक के जीव वहां से उपशम समय तो प्राप्त किया, फिर सासादन में गए, मरे, ऐसा हो सकता है ना वहां पर? हाँ, वहां से मध्य लोक में आने वाले या सासादन में मरकर देवों में जाने वाले, ऐसा भी ले सकते हैं। हाँ? यानी ऊपर कहाँ तक? ऊपर 6 और नीचे 6। स्पर्शन हमेशा अलग अलग जीवों की अपेक्षा ही होते हैं, यानी नारकियों में से भी सासादन में मरकर कहाँ तक के जीव आ सकते हैं? हाँ, तो 6ठे नरक तक सासादन में मरण हो सकता है, 7वें नरक में तो मिथ्यात्व में ही मरण होता है। हाँ, ऊपर के 5 हो जाएंगे, 5 राजू नीचे। हाँ, सासा वो 2 अपेक्षा, वहां 2 मत है। हमने पहले देखा था कि सासादन में मरकर संगी में ही जाते, ऐसे कोई कहते हैं। समय ज्ञान चंद्रिका में ही 2 बातें लिखी है, और टेबल में तो वहां तो संगी में ही उत्पन्न होता ऐसा लिखा है, और एक मत ऐसा कि वो मरकर सभी पर्याप्तों में जा सकता है, एक इंद्रिय पर्याप्त तक में जा सकता है, परंतु उसके मिश्र अवस्था में उसका सासादन से वो मिथ्यात्व में आता है। दोनों ही अपेक्षा आती है, ऐसे 2 कथन अलग अलग आते हैं। वो तो मध्य में आएगा, मध्य लोक में आएगा। हाँ? मारणांतिक की अपेक्षा या उपपाद के, उपपाद में नरक गति वाला नहीं, नीचे कुछ जीव नरक में से यहाँ आएंगे और कुछ देव में से यहाँ आएंगे, ऐसा लेना है। नीचे कहाँ तक जाना? 5 राजू, और ऊपर कहाँ तक जाना? देखो, मारणांतिक उसने सासादन में किया और मिथ्यात्व में जाके मरा, ऐसा भी ले सकते ना हम? तो मारणांतिक ऊपर, फिर वो पृथ्वी में हाँ 12 घटित करना है ना, 12 घटित करना है। नारकी जीव नहीं, कोई भी अन्य जीव, कोई मध्यलोक का जीव है। मध्यलोक का जो ऊपर कहां तक जा सकता है, हाँ, अन्य अन्य जीवों की अपेक्षा बात है ना यहाँ पर। हाँ, कुछ कम 12 भाग प्रमाण, एक जीव 12 भाग, 12 बटे वो 12 भाग में नहीं जाएगा। एक जीव नीचे से कोई यहाँ आते हैं, देखो नीचे से कुछ यहाँ आते हैं तो हमने उसको घटित किया। हाँ हाँ हाँ, एक जीव में नहीं घटित करना है। ये स्पर्शन हमेशा अनेक जीवों की अपेक्षा ही होता है। हाँ ऊपर जाएगा वहां उसकी अपेक्षा, हमने वो बिहारवत की अपेक्षा में उसमें एक एक जीव में देवों में घटित करते थे। देवों में घटित कैसे हो सकता है, तो देव कैसे इतने राजू जाता है, तो विहार करके नीचे गया और वहां से मारणांतिक किया। वो गति मार्गणा में घटित कर रहे थे हम। अब यहाँ किस में घटित कर रहे हैं हम, सासाधन में। सासाधन गुणस्थान है तो सासाधन में मारणांतिक किया, ऐसा लेना उनको। हाँ हाँ, गुणस्थान सासाधन चल रहा है तो सासाधन में भले मारो मत उसको मारणांतिक समुदाय तो करेगा कि नहीं करेगा, मरण तो हो सकता है परंतु मारणांतिक समुदाय किया है और बीच में ही मिथ्यात्व में चला गया और फिर वहां जन्म लिया तो ले सकते हैं। केंद्रियों में ऊपर 8वीं पृथ्वी तक ले जाना, 7 राजू ऊपर, 6 राजू नहीं है ना, 5 ही लेने ना नीचे, 6ठी पृथ्वी। हाँ तो 5 राजू, 7वां नरक, 6 राजू है। सातवें वाला सासाधन में मरता ही नहीं है, मिथ्या तो में ही मरता है। कौन? आयु बांधने का कार्य भी मिथ्यात्व में ही होता है। सातवें नरक का नारकी मिथ्यात्व में जाएगा, अंतर्मूर्त बिताएगा, आयु बांधेगा, फिर अंतर्मूर्त बिताएगा, फिर मरण होगा उसका। मारणांतिक जो अन्य जीवों में हो सकता है नहीं होगा, मारणांतिक हो ही नहीं सकता। तो ये हमने 12/14 देखा था। इस प्रकार स्पर्शन अनुयोग द्वारा समाप्त हुआ स्पर्शन में बहुत विचार करना पड़ता है ना। अब कालानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है। ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। पहले हमने कालानुगम देखा था, वो और इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ बहुत अच्छा, वहाँ एक जीव की अपेक्षा बात की थी और यहाँ अनेक जीवों की। देखो हमने यहाँ लिखा था ये अंतर और काल सब हमने देखे थे, पृष्ठ 43 के भी पहले होगा। 44 में तो अंतर अनुयोग चालू हुआ था, अंतर के पहले काल होता है, वो हरेक मार्गणा में घटित करके देखा था हमने। इंद्रिय मार्गणा तिर्यंश गति में 27 पेज पर है, 27। वहां से अपना शुरू हुआ था ना, उसके पहले स्वामित्व और वो सब शादी अनादि वो देखा था। तो कालानुगम जो देखा था वो एक जीव की अपेक्षा काल देखा था। अब यहाँ जो देख रहे हैं वो नाना जीवों की अपेक्षा, पेज 27 पर एक जीव देखा था हमने। अब कितनी मार्गणाओं में तो सदैव है ऐसा कहेंगे विभक्ति वाले, है ना? और कहीं कहीं जो जहां वो सांतर मार्गणा जहां अपेक्षा लगती है, जैसे अविभक्ति वालों में 12वां गुणस्थान हमेशा नहीं होगा, जो जहां होगी बात वो अभी हम देखेंगे। तो निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मोनीय विभक्ति वाले और मोनीय अविभक्ति वाले जीवों का कितना काल है। तो खाली जीव यही बात पर लगाई, मार्गणा नहीं लगाई, जीव विभक्ति वाले जीव और अविभक्ति वाले जीव। तो विभक्ति वाले जीव कहाँ तक है, कौन से गुणस्थान तक? 11वें तक है। तो नाना जीवों की अपेक्षा काल हमको देखना है, यानी हमेशा वो जीव होगे कि नहीं होगे। विभक्ति वाले कोई ना कोई जीव है ना, तो हमेशा ही रहेंगे इस विश्व में। और अविभक्ति वाले सिद्धों को भी लेना है उसमें, 12वां 13वां 14वां सिद्ध सब कुछ अविभक्ति वाले जीव है, ये सामान्य कथन हो रहा है। तो वे भी हमेशा ही पाए जाएंगे। अरविंद भाई ने कुछ कहा, गुणस्थान सभी नहीं होगे परंतु जीव को लेना है, यहाँ गुणस्थानों में बाद में लगाएंगे क्योंकि वो तो हमेशा जीव है कि नहीं उतनी बात है, विभक्ति वाले जीव है कि नहीं है। तो एक मिथ्यात्व ही गुणस्थान ले लो ना, तो विभक्ति वाले हमेशा पाए जाएंगे। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य, यानी सामान्य मनुष्य में विभक्ति वाले जीव भी हमेशा हो गए, अविभक्ति वाले हमेशा हो गए क्या? कभी कभी हो गए बेन, हाँ क्यों? हाँ 12वां हमेशा नहीं होता है, हाँ 13वां गुणस्थान हमेशा रहता है। मनुष्य जब कहेंगे तो सिद्धों को नहीं लेना, हाँ 13वां होता है, 14वां कभी कभी होता है, 14वें में अंतर पड़ से, यानी 14वें गुणस्थान वालों में वो सांतर मार्गणा में आते। तो मनुष्य पर्याप्त, उसको भी वही अपेक्षा लगाएंगे। मनुष्य नहीं, वो भी हमेशा हो गए उसमें, विभक्ति वाले भी और अविभक्ति वाले भी। पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, वहां भी विभक्ति अविभक्ति मनुष्य उसमें क्राइटेरिया आता है। तो हम अपने केवल यहाँ पंचेंद्रिय में सोचना है, तो पंचेंद्रियों में भी वो 12वां गुणस्थान और 13वां गुणस्थान होगा ना उनमें, तो वहां इस तरह से सोचना। तब त्रस त्रस पर्याप्त, सामान्य सत्य और अनुभव, ये तीन मनोयोगी। सामान्य मनोयोगी जिस कोई अपेक्षा लागू होती है तो सामान्य को भी ले लिया, और सत्य और अनुभव ये दो ही लिए, तो उनमें हाँ ये तीन मनोयोगी और ये ही तीन वचन योगी, क्योंकि उनमें ऐसे चाहिए कि उसमें दोनों ही लागू होने चाहिए, विभक्ति वाले भी होने चाहिए अविभक्ति वाले भी होने चाहिए। यदि हम पांचों मनोयोगी कहते तो पांचों मनोयोगियों में हम सामान्य से बात कर रहे हैं, विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले जीव होते हैं कि नहीं होते? पांचों मनोयोगी 12वें गुणस्थान तक तो हो सकते हैं, परंतु क्या सदाकाल होते हैं? 12वां गुणस्थान सदाकाल नहीं होता, इसलिए पांचों मनोयोगी वाले को नहीं लिया, परंतु दो योग लिए, कौन से? सत्य और अनुभव। तो सत्य अनुभव और सामान्य, जो सत्य अनुभव में लागू होता है वो सामान्य में भी लागू होगा। तो सत्य और अनुभव मनोयोगी और विभक्ति वाले भी और अविभक्ति वाले भी, तो विभक्ति वाले कहां तक हो गए? नहीं, दो सत्य और अनुभव वाले, कहा से? वो मिथ्या तो गुणस्थान से है ना, 11वें तक, यानी तो हमेशा विभक्ति वाले तो होगे ही होगे। देखो सत्य और अनुभव मनोयोग कहो या वचन योग कहो, कौन कौन से जीवों को होता है? अभी विभक्ति की बात छोड़ दो, कौन से जीवों के पाया जाता है? उसको नहीं लेना मनोयोग, कौन अभी कौन सा मनोयोग वो भी छोड़ दो, मनोयोग कौन से जीवों में होता है? हाँ संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रियों के गुणस्थान कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 14 तक, संगी पंचेंद्रिय कहा हमने, हाँ संगी पंचेंद्रिय। एक से 14 तो संगी पंचेंद्रिय। अभी हमको क्या सोचना है, कौन सा योग है? मनोयोग तो पहले गुणस्थान से चारों ही हो गए ना मनोयोग, चारों प्रकार के मनोयोग, और वो पांचवा सामान्य, यानी उसमें सत्य और अनुभव भी आ गया कि नहीं आया? तो विभक्ति वालों में सत्य और अनुभय पहले गुणस्थान से कहीं भी घट, यानी विभक्ति वाले जीव है उसमें। और यहाँ कैसे सत्य और अनुभय बारहवें में हो सकता है और विभक्ति के साथ, परंतु बारहवां गुणस्थान हमेशा नहीं है। इसलिए हमें ऐसा चाहिए जीव जो हमेशा पाए जाएंगे और अविभक्ति होने चाहिए और उसमें सत्य और अनुभव वचन योग मनोयोग होने चाहिए, ऐसा कौन सा तेरवा। चौदवा वाला उसमें योग नहीं होता, तो तेरवे वाला वो जो सदाकाल गुणस्थान पाया जाता है और वहाँ ये दो मनोयोग पाए जाते हैं, तो इसलिए सामान्य और ये दो ऐसे लिए, मनोयोग भी और वचन योग भी। इनमें विभक्ति वाले कहाँ से, तो जहाँ चारों मनोयोग है वहाँ ये भी है ही ना। हाँ इंडिविजुअल ये ही होते ऐसा नहीं लेना है, इंडिविजुअल नहीं उसमें ये भी है ना, इसलिए उसको लेना वो। और ऊपर केवल ये दो है, तो इन दो में और सामान्य में विभक्ति वाले भी जीव है और अविभक्ति वाले भी जीव है। अन्य दो को छोड़ना है, अन्य दो वचन योग और मनोयोग को जो असत्य और उभय वाले है उसको छोड़कर, क्योंकि उसको लेंगे वो तो बारहवें तक है अविभक्ति वाले है, परंतु बारहवां गुणस्थान सदाकाल नहीं है, हमें सदाकाल भी घटित करना है और फिर विभक्ति और अभक्ति दोनों ऑप्शंस उसमें होने चाहिए। ऐसे कौन कौन सी मार्गणा है उसको यहां बता रहे हैं। तो देखो सामान्य सत्य और अनुभव ये तीन मनोयोगी और यही तीन वचन योगी। फिर काय योगी, जब काय योगी कहेंगे, काय योगी और जो सदाकाल होते हैं कि नहीं होते, काय योगी हमेशा होते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है अभी, अभी वो एक जीव की अपेक्षा नहीं सोचना है। तो काय योगी वाले हमेशा इस विश्व में जीव हो गए, तो काय योग के साथ विभक्ति वाले भी हो गए और अविभक्ति वाले भी हो गए कि नहीं हो गए। तो काय योग के साथ अविभक्ति वाले कौन कौन से गुणस्थान में जो सदैव रहते हैं, तेरवा गुणस्थान, इस तरह से सोचना। अब औदारिक काय योगी में भी यही बात ऐसे अप्लाई करना, तेरवे की अपेक्षा अविभक्ति वाले। संयत तो विभक्ति वाले भी हमेशा ही पाए जाएंगे और अविभक्ति वाले कौन से संयत है जो हमेशा होते हैं, तेरवे तो हमेशा है, बारहवें चौदहवें वाले कभी कभी होंगे परंतु सदाकाल होने वाले ऐसा में, चौदह वाला सदाकाल नहीं होता, उसमें अंतर में रहेंगे, उसको छह महीने का अंतर भी पड़ सकता है। शुक्ललेशा वालों में भी सदैव होने चाहिए, विभक्ति वाले भी चाहिए और अविभक्ति वाले भी चाहिए। तो शुक्ललेशा विभक्ति वाले जीव कौन से गुणस्थान से पाए जाते हैं, हाँ सोचो, बराबर सोचने दो इन लोगों को। हाँ जयबेन आप सोचो, बहुत अच्छा, पहले गुणस्थान से शुक्ललेशा पाई जाती। शुक्ललेशा हम कहेंगे कहाँ से कहाँ तक है, तो पहले से तेरहवें तक ऐसा, और विभक्ति वाले ग्यारहवें तक और अविभक्ति वाले बारहवें तेरहवें, परंतु हम सदाकाल रहने वाला ऐसा गुणस्थान चाहिए तो तेरवा वाला। भव्य चौदहवें तक भव्य कहेंगे हम, तो भव्यों में भी सदैव रहने वाले विभक्ति वाले भी है अविभक्ति वाले भी। सम्यक दृष्टि, अभी सिद्धों तो हमेशा रहेगी वो तो उसमें ऐसे एप्लीकेशन, क्षायिक समय दृष्टि, आहारक जो सदैव रहते हैं विभक्ति वाले भी और अविभक्ति वाले भी। अविभक्ति वाले आहारक कौन से हैं जो सदाकाल रहते हैं, हाँ तेरहवें गुणस्थान वाले। और अनाहारक में क्यों नहीं होते, चौदहवें वाले। हाँ सिद्धों को अनाहारक ले लेना, हाँ केवली समुदाय वाले तो कभी कभी हो गए, उसमें अंतर पड़ेगा। विशेषार्थ, यहाँ मोहनीय विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा काल बतला, ये महत्व की बात है। पहले जब हम सोचते थे एक जीव लगातार कितने काल तक रह सकता है उसमें, वो बात अब यहाँ नाना जीव, सामान्य से तो उक्त दोनों प्रकार के जीव सर्वदा है ही, पर ऊपर जितनी मार्गणाएं बतलाई है उनमें भी दोनों प्रकार के नाना जीव सर्वदा पाए जाते हैं, इसलिए इनकी प्ररूपणा को ओघ के समान कहा है। ओघ के समान यानी सर्वदा है, ये ओघ हुआ। अब जिसमें वो काल जहां गिनना है नाना जीवों की अपेक्षा, कि जिसमें अंतर पड़ता है परंतु फिर भी लगातार नाना जी उसमें रहेगी कितने काल तक, अंतर की बात यहां नहीं बता रहे, परंतु जो सांतर मार्गणाएं है उसमें अंतर के बाद जब उसमें जीव होते हैं तो लगातार कितने काल तक रहेंगे, उसको नाना जीवों की अपेक्षा काल कहेंगे। जैसे लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, ऐसे हो सकता है कि बीच में गैप पड़े तो एक समय से लेकर पल्ले के असंख्यात विभाग तक कोई जीव न हो, ऐसा भी बन सकता है, परंतु जब जीव होते हैं तो लगातार कितने काल तक हो गए, उसको यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा काल बताया। तो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों में ये विभक्ति वाले है कि अविभक्ति वाले है? हाँ, विभक्ति वाले ही है। लब्ध्य, क्योंकि लब्धि अपर्याप्त का लब्ध्य होता है ना, बध और य। लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्यों में मोहनी विभक्ति वाले जीवों का कितना काल है? तो जगन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण, कोई जीव आया उसमें और तो उतना काल तो बिताएगा ना वहां पर। और उत्कृष्ट काल पल्लोपम के असंख्यात विभाग प्रमाण, एक जीव की अपेक्षा बात नहीं है, कोई जीव आया फिर दोबारा कोई और जीव आया फिर और कुछ उसमें जन्मता रहा, ऐसे लगातार चलता रहे जब तक अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर पड़ने ने कोई भी जीव उसमें नहीं ऐसा जब तक होगा तो अधिक से अधिक कितना काल हो सकता है? हाँ, तो के पल्ले के असंख्यात विभाग। इसका यह तात्पर्य है कि इसका अर्थ बताते हैं कि लब्धि अपर्याप्त लब्ध हुआ यहां पर भी, कि लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य कम से कम खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण काल तक और अधिक से अधिक पल्लोपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक निरंतर अवश्य पाए जाते हैं। लगातार पाए जाने का काल जो है वो तो या तो एक क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक होगा, क्योंकि अनेक जीव या एक जीव एक साथ उत्पन्न हुए और अपनी आयु पूरी करके मरे और बाद में गैप पड़ गया तो उतने काल तक वहां उसमें जीव है, और कोई अभी वो मरने के पहले और कोई जीव आए, वो मरने के पहले और कोई आए, ऐसे लगातार होता गए तो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण। इसके बाद उनका अंतर हो जाता है, उसके बाद नियम से अंतर पड़ता ही है, अतः इसी अपेक्षा से लब्ध्य पर्याप्त तक, यहां यह लब्ध पूरा रखा है उसका खोड़ो करना उसको, लब्ध्य पर्याप्त मनुष्यों में मोहनीय विभक्ति वाले जीवों का उक्त काल कहा है, ये नाना जीवों की अपेक्षा काल कहा है। मेरा प्रश्न है, एक जीव की अपेक्षा लब्ध्य पर्याप्त का काल कितना है? हाँ, कौन सा? ये क्षुद्र बहुग्रहण वाला अंतर्मूर्ति होता है, उसमें भी जगन्य और उत्कृष्ट जो कुछ होगा, जगन्य भी होगा उत्कृष्ट, क्योंकि क्षुद्र भव ग्रहण में भी जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु हो सकती है। एक जीव है ना, उसका एक भव उसमें है, और हम स्थिति की अपेक्षा लगातार उसमें आते रहेंगे तो भी वो अंतर्मूर्त ही होगा। हमने देखे थे लगातार आठ भव हो सकते हैं उसके लब्धि अपर्याप्त में, उसका भी काल उत्कृष्ट जर कहेंगे उसको, एक जीव की अपेक्षा तो वो भी अंतर्मूर्त होगा। यहां उसकी बात नहीं है, यहाँ तो नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। अब आगे, असत्य और उभय मनोयोगी तथा असत्य और उभय वचन योगी जीवों में, ये व का ब और ब का व करते सब जगह, मोहनी विभक्ति वाले जीव सर्वदा होते हैं। ये असत्य और उभय वो तो बारहवें तक होते हैं, परंतु कौन से इंद्रियों से लेना यहाँ पर? वचन योगियों की बात करेंगे, मनोयोगी की बात बाद में करेंगे, द्विंद्रिय से। हाँ, और गुणस्थानों में बताना है तो पहले गुणस्थान से लेकर, तो हमेशा ही होते हैं। तथा मौनीय अविभक्ति वाले जीवों का जघन्य काल एक समय, देखो पहले तो हमने देखा था सत्य और अनुभय में, तो सत्य और अनुभय में तो सर्वदा होते हैं, देखा था। विभक्ति वाले भी सर्वदा होते हैं और अविभक्ति वाले भी सर्वदा होते हैं, क्योंकि उसमें तेरवा गुणस्थान लिया था। बताती हूँ अब यहाँ कौन से लेना है, तो सत्य असत्य और उभय लेना है। तो विभक्ति वाले तो सर्वदा पाए जाते हैं और अविभक्ति वाले जीव, जहां सत्य असत्य और उभय हो सकता है और अविभक्ति वाले है, ऐसा कौन सा गुणस्थान है? बारहवा। तो बारहवें गुणस्थान वाले क्या सर्वदा नाना जीवन की अपेक्षा पाए जाते हैं? तो उसमें वो क्षपक श्रेणी में अंतर पड़ता है ना, तो बारहवा गुणस्थान सदैव नहीं पाया जाता, तो बीच में अंतर पड़ेगा। परंतु यहां काल पूछा है, तो जघन्य काल मौनीय अविभक्ति वाला, हाँ, आपका प्रश्न है ना, एक समय कैसा? हाँ, जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, ऐसा क्यों? हाँ आया, हाँ, क्योंकि हमने देखा था ना बारहवें के शुरू में वो पृथक्त्व वितर्क विचार वाला है, तो यहां योग का पलटना होता है। तो असत्य मनोयोग या वचन योग के साथ उसमें आया और उसका पहले ही अंतर्मूर्त बीत चुका था, उसका मान लेते हैं, और उसका योग का पलटना हुआ, तो बारहवें के साथ एक समय वो विशिष्ट योग में रहा, उस अपेक्षा से उसको लेना है। और उसमें भी नाना जीवों की अपेक्षा लेना है, तो एक ही जीव है वहां पर और वो उस योग में है और बाद में उसका पलट गया। हाँ, योग तो अंतर्मूर्त होता ही है। हाँ, परंतु बारहवें की यह विशेषता यह है कि बारहवें के शुरू में तो यह है पृथक्त्व विचार, बाद में एकत्व हो जाता है, एकत्व वितर्क अविचार, तो योगों का पलटना नहीं होता। परंतु यहां भी नाना जीव लेने हैं, तो उसी योग के साथ रहने वाले वहां नाना जीव की अपेक्षा बात करनी है, वहां अन्य जीव भी हो गए परंतु अन्य योग में हो गए, ऐसा भी हो सकता है। तो जघन्य काल एक समय, हाँ, एक समय में ऐसा है, कोई जीव पहले अभी मान लेते हैं 100 समय वाला है उसका योग का काल, तो 99 समय उसने 10वें में बिताए उस योग के साथ, और 12वें में आया और एक समय उसने वो असत्य मनोयोग के साथ बिताया, फिर उसका योग पलट गया, असत्य मनोयोग से या तो वचन योग हो गया, काय योग हो गया, या सत्य मनोयोग हो गया, तो उसका एक समय घटित हुआ। योग का काल 10वें के साथ गिनना, और वहां विभक्ति वाला था, यहां अविभक्ति वाला हो गया, अविभक्ति के साथ उसने एक समय बिताया, योग वही रहा जो 10वें में था, 12वें में आते ही एक समय में योग पलट गया, परंतु एक समय वो उस योग के साथ अविभक्ति वाला हो गया था, पहले विभक्ति वाला था, ये एक समय हो सकता है। और अधिक से अधिक उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, देखो आपका प्रश्न है, बारहवें गुणस्थान वाले के वे तो इतने ज्ञानी हैं, तो उसको असत्य और उभय ये कैसे हो सकते हैं? तो क्या वो केवल ज्ञानी है? तो पूरा ज्ञान नहीं है ना उनके, ये पूरा पदार्थ कैसे है, कुछ उसके ज्ञान में नहीं जाने जाते, ऐसे भी है ना, इसलिए पदार्थ की अपेक्षा वहां असत्य कहने में आता है। हमने देखा ना सत्य असत्य के जब भेद देखे थे योग मार्गणा में, तो पदार्थ को ही वहां सत्य और असत्य कहा था, हाँ, उसमें उदाहरण भी हमने देखे थे कि सत्य के क्या है, जैसे जल भरने के लिए या जल को जल कहना, क्यों? वो तो जल से जो क्रियाएं किरने में आती है, पानी पीना है, स्नान करना है, तो जल को जल जानना कहना ये तो सत्य हो गया, क्योंकि वो सत्य पदार्थ है। अब जो जल है नहीं और उसको जल जान रहे हैं और बोल रहे हैं, जैसे मृग जल है, मृग जल से तो कुछ पीने का प्यास नहीं बुझती है, ना ही स्नान किया जाता है, फिर भी वहां जलपने की बुद्धि हो रही है, तो ऐसा वचन ऐसा जानना उसको तो असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग कहेंगे। ये तो उदाहरण के तौर पर, ऐसे अन्य भी समझ लेना। उभय में क्या है, हमने वो तो जाना कि वो जल भरने आदि के काम है, तो किसी वो घट को कमंडल या कमंडल को घट कह दिया, दोनों का कार्य एक हो सकता है जल भरने का, परंतु आकार की अपेक्षा वो बाकी सब भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए वो उभय में ले लेते हैं। और अनुभय में क्या लेना, किसी को बुलाया यहां आ जाओ, तो वो क्या है, सत्य असत्य कुछ नहीं है उसमें, इस तरह से उसके भेद करते हैं। तो 12वें गुणस्थान तक, क्योंकि क्षोभम अवस्था है इसलिए वहां तक वो असत्य और अनुभय होते हैं, ये उभय भी हो सकते हैं। और 12वें गुणस्थान तक के सभी पूरे शुद्ध केवली नहीं होगे, और शुद्ध केवली होगे भी तो भी केवल ज्ञान की अपेक्षा कुछ बातें तो बिना जाने हुई रहेगी, उस अपेक्षा कहते हैं उसमें। ये अन्यथा जानते हैं नहीं, कुछ विपरीत जानते हैं ऐसी बात नहीं कहे, यानी असत्य में वो नहीं लेना है, यानी झूठ बोलते तो सत्य वचन कहां रहा, वो बात नहीं है यहां पर। ये कहां गए हम, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। हाँ, औदारिक मिश्र का योगियों में, हाँ ये बोलना है ना, वो बोलने का कार्य कहां है, वहां पर वचन योग की बात चल रही है, वहां जो कुछ वचनात्मक, वहां जो कुछ विचार चल रहे हैं उसकी बात चल रही है वहां पर। औदारिक मिश्र का योगियों में, औदारिक मिश्र का योगी तो उसमें विभक्ति वाले होते हैं कि अविभक्ति वाले होते हैं, दोनों होते हैं। औदारिक मिश्र का योग और अविभक्ति वाले जीव कहां पाए जाते हैं, तेरे समुद्घात अवस्था में, वो भी कौन सा समुद्घात, कपट, तो सदाकाल रहेगे कि नहीं रहेंगे, केवली सदाकाल होगे परंतु समुद्घात करने वाले सदाकाल नहीं रहेंगे, तो उसमें तो लगातार कोई करता रहे तो वो लंबा काल हो जाएगा, तो कोई एक ही जीव करे तो वो एक समय के लिए करने वाला रहेगा, हम देखेंगे अभी। मोहनीय विभक्ति वाले तो हमेशा रहेंगे ना, औदारिक मिश्र है वो पूरा लोक भरा है उनसे, जीव सर्वदा होते हैं, तथा मोहनीय अविभक्ति वालों जीवों का जघन्य काल एक समय, नाना जीवों की अपेक्षा कोई एक जीव कर रहा है और वो कपाट अवस्था में है अभी। उत्कृष्ट कितने होते उसकी बात नहीं है, उत्कृष्ट एक साथ हो गए भी फिर उनका समय एक घटित किया, एक के पीछे एक होते रहे लगातार तो वो उत्कृष्ट काल कहलाएगा। तो कहते जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, यानी संख्यात जीव ही करेंगे, लगातार भी करते रहेंगे तो। इसी प्रकार कार्मण का योगी जीवों के जानना चाहिए, कार्मण का योगी जीवों में भी क्या है, वो विभक्ति वाले कब हो गए, विभक्ति सदाकाल, क्योंकि विग्रह गति में तो कितने ही जीव पड़े हैं, हमेशा ही हर समय। तो जो अविभक्ति वालों का जघन्य काल है हमने आहारक मिश्र में एक समय घटित किया था, तो यहां औदारिक मिश्र में, और यहां तीन समय तो होगा ही, नाना जीव है तो कोई जीव उसमें कर रहा है तो वो तीन समय तक तो रहेगा ना, एक भी जीव भले हो तो तीन समय तक होगा लगातार, तो जघन्य काल तीन समय है। और उत्कृष्ट काल कितना होगा, वो 20 जीव एट ए टाइम की बात है, एट ए टाइम की बात है 20 की, परंतु उसको संख्यात कहना, हाँ एक समय में करने वाले उत्कृष्ट जीवों की संख्या होती है 20 और 20-40, उसकी बात यहाँ नहीं है। लगातार करते रहे, लगातार करते रहे तो की बात है, उसको संख्यात कहना। वैकृत मिश्र काय योगियों में मौनी विभक्ति वाले जीवों का कितना काल है, तो वैकृत मिश्र में अविभक्ति वाले जीव हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा, तो विभक्ति वाले सदाकाल हो गए कि नहीं हो गए? वहां अंतर पड़ता है, क्योंकि हम देखते ना, वो तो कितने मुहूर्त का अंतर पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, कोई जीव नहीं जन्मेगी, हाँ 12 मुहूर्त जो हमने देखा था, हाँ तो यहां तो काल देखना है, वहां अंतर है 12 मुहूर्त। अब लगातार उत्पन्न होते रहना चाहिए, तो अंतर के बाद हो सकता है एक ही जीव उसमें आया, तो आया तो भी वो उतना काल बिताएगा उसका जो अंतर मुहूर्त है उतना। एक जीव भी उसमें आया है, जन्मा है, तो भी अंतर मुहूर्त काल तक वैकृत मिश्र अवस्था रहेगी उसकी, पहले समय से लेकर शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक जो अंतर मुहूर्त है। तो कहते हैं वैकृत मिश्र काय योगियों में मौनी विभक्ति वाले जीवों का कितना काल है, जगन्य काल अंतर मुहूर्त। मान लेते एक साथ एक जीव भी आया, 10 भी जीव वहां उत्पन्न हुए, तो उसका जो मिश्र का काल है उतना बिताएंगे और फिर उनका योग बदलेगा, तो वो जगन्य काल हुआ उनका। और उत्कृष्ट काल पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण है। द्विरूप वर्गधारा में आवली के आगे असंख्यात स्थान जाते हैं तो पल्य आता है, क्योंकि आवली में ही जगन्युक्ता संख्यात समय है, और फिर आगे आगे के स्थान जो असंख्यात असंख्यात होते हैं। आहारक कायोगी जीवों में यानी वैकृत मिश्र में एक जीव आया, वो बीच में थोड़ा अंतर भी पड़ा, फिर भी वो अंतर मुहूर्त पूरे होने के फिर और कोई जीव आके जन्मा और कोई जीव आके जन्मा, ऐसा लगातार चलता रहे तो भी पल्ले के असंख्यात भाग काल तक लगातार होता रहे, बाद में अंतर पड़ेगा ही, और अंतर पड़ता है तो अधिक से अधिक, कम से कम एक समय पड़ेगा, अधिक से अधिक कितना पड़ेगा अंतर, 12 मुहूर्त का। आहारक कायोगी जीवों में मौनी विभक्ति वाले जीवों का जघन्य काल, ये आहारक है, औदारिक नहीं है, आहारक, आहारक शरीर बनवाने वाले जीव जो है, तो आहारक में ये सारे सांतर मार्गणाएं हैं, उसमें अंतर पड़ता है वर्ष पृथक्त्व का, तो कभी कभी ऐसा है ना, अभी एक ही जीव उसमें आया है, तो आहारक का योग के साथ मौनी विभक्ति का जघन्य काल एक समय कैसे होगा? हाँ, आहारक हुआ और एक समय में मरण हुआ। हाँ, योग एक समय में नहीं पलटेगा, योग ऐसा पलट सकता है कि अंत में मनोयोग से आहारक का योग में आया और फिर वो उसका औदारिक शुरू हुआ, फिर भी यह मरण की अपेक्षा लेना। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी लगातार कोई ना कोई आहारक करते रहेंगे, क्योंकि वो भी संख्यात जीव होते हैं, हमने देखा था 27 होते हैं या 56 होते हैं, तो उसमें लगातार करने वाले जीव तो ही संख्यात समय हो जाता है, वो ये अंतर्मूर्त लिया असंख्यात समय हो जाते हैं। जीव संख्यात है परंतु उसका काल जो है अंतर्मूर्त तक संचय होने वाले अंतर्मूर्त होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्रायिक संयत जीवों के जानना चाहिए, ये संयम मार्गणा की अपेक्षा इसको अलग निकाला, सूक्ष्म सांप्राय संयम वालों में तो लगातार तो नहीं पाए जाएंगे, कभी कभी अंतर पड़ेगा, तो एक जीव आया या फिर अधिक जीव उसमें लगातार आते रहे, इस तरह से लेना उसको। आहारक मिश्र का योगियों में मौनी विभक्ति वाले जीवों का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। आहारक का योग में तो एक समय घटित किया था तो मरण की अपेक्षा होता है, परंतु एक बार आहारक मिश्र में आए तो लगातार तो अंतर्मूर्त तो रहेगा ही नहीं, बाद में जब तक आहारक का योग नहीं होता है तब तक वो जीव उसमें रहेगा ना कोई जीव, एक भी नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव भी उसमें है तो तो अंतर्मूर्त तो जब तक उसका मिश्र काल पूरा नहीं होता तब तक उसमें पाया जाएगा, इसलिए जघन्य काल अंतर्मूर्त बताया। इसका विशेषार्थ और बताते वो कल देखेंगे, कल देखें। हाँ, उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त है। हाँ, 5 मिनट है तो विशेषार्थ देखना है, देखेंगे कि अभी पढ़ा है तो अभी पढ़ लो कि बहुत थक गए। हाँ, विशेषार्थ, नाना जीवों की अपेक्षा असत्य और उभय ये दोनों मनोयोग नहीं लेना है, और यही दोनों वचन योग सर्वदा पाए जाते हैं। देखो सर्वदा है ना, अभी हमने ये सब इसकी डिस्कस किया है, अभी तो केवल पढ़ना है, नहीं समझे तो भी देखेंगे। अतः इनकी अपेक्षा मुनि विभक्ति वाले जीव सर्वदा होते हैं यह कहा है, तथा 12वें गुणस्थान की अपेक्षा यह असत्य और उभय 12वें तक है और 12वें में अविभक्ति वाले हैं, तो 12वें की अपेक्षा उक्त योगों में मोहनीय अविभक्ति वाले भी जीव पाए जाते हैं। अतः जिन जीवों के उक्त दोनों मनुयोगों और वचन योगों के काल में एक समय शेष रहने पर 12वां गुणस्थान प्राप्त हुआ है, यानी बाकी वो उनका वो मनोयोग का काल 10वें में बीत गया है और एक समय बाकी था तब 12वां गुणस्थान हो गया है, उनके उक्त योगों की अपेक्षा जघन्य काल एक समय बन जाता है, तथा उक्त योगों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होने से उसकी अपेक्षा मोहनीय अभिभक्ति वाले जीवों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्राप्त होता है। यहाँ यह शंका होती है कि 12वें गुणस्थान में योग परिवर्तन नहीं होता, परावर्तन का है, अतः यहाँ उक्त दोनों मनोयोग और वचन योगों का जघन्य काल एक समय नहीं कहना चाहिए। उसका यह समाधान है कि यहाँ एक योग से योगांतर नहीं होता यह ठीक है, फिर भी मनोयोग और वचन योग की अपेक्षा अपने अवांतर भेदों में परावर्तन होने में कोई बाधा नहीं है। हाँ, यानी मनोयोग नहीं पलटेगा, कायोग नहीं होगा, फिर भी मनोयोग के जो भेद है उसमें पलटा होगा, सत्य से असत्य से उभय ऐसा अनुभय उसमें पलटन होगा, ऐसा कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ कहते कि मनोयोग और वचन योग के जो अवांतर भेद है उसमें पलटना होगा, तो काय योग के अवांतर भेदों में पलटना होगा कि नहीं होगा? वहां कौन सा होगा? औदारिक काय योग ही होगा, क्योंकि उसके अन्य भेदों की यहाँ कोई बात ही नहीं है। नहीं समझे? अन्य काय योग कौन से होते हैं? कर्मण काय योग है, आहारक है, वैक्रिक है, उसकी यहाँ कोई संभावना ही नहीं है। हाँ, इसका यह तात्पर्य है मनोयोग से वचन योग या काय योग नहीं होता, इसी प्रकार अन्य योगों की अपेक्षा भी जान लेना चाहिए। पर मनोयोग या वचन योग का एक अवांतर भेद होकर उसके स्थान में दूसरा अवांतर भेद आ सकता है, असत्य हो सकता है, चारों में परिवर्तन हो सकता है। नाना जीवों की अपेक्षा औदारिक मिश्र काय योग और कार्मण का योग सर्वदा पाए जाते हैं, तथा इनमें मोहनीय विभक्ति वाले जीव भी सर्वदा पाए जाते हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा मोहनीय विभक्ति वाले जीवों का काल सर्वदा कहा है। पर मोहनीय अविभक्ति वाले जीवों के औदारिक मिश्र का योग और कार्मण का योग सर्वदा नहीं होते, जब केवली केवली समुद्घात करते हैं तब उनके कपाट समुद्घात के समय औदारिक मिश्र का योग और लोकपूरण समुद्घात के समय कार्मण का योग होता है, वहां लोकपूरण और प्रतर भी लेना। अब यदि नाना जीव एक साथ केवली समुद्घात करते हैं तो इन दोनों योगों की अपेक्षा मोहनीय अविभक्ति वाले जीवों का जघन्य काल क्रम से एक समय, क्रम से ने औदारिक मिश्र के लिए एक समय और कार्मण का योग के लिए 3 समय पाया जाता है, और यदि लगातार नाना जीव केवली समुद्घात करते हैं तो इन दोनों योगों की अपेक्षा मोहनीय अविभक्ति वाले जीवों का उत्कृष्ट काल संख्यात समय पाया जाता है, क्योंकि अधिक से अधिक संख्यात समय तक ही नाना जीव लगातार केवली समुद्घात करते हैं, संख्यात समय तक ही करेंगे, बाद में तो नहीं करेंगे। वैकृत मिश्र का योगी आदि का काल भी इसी प्रकार समझ लेना चाहिए। वैकृत मिश्र एक समय नहीं हुआ, औदारिक मिश्र एक समय कैसा घटित होता है वो केवली में। हाँ नहीं नहीं उसका भी अंतर्मूर्त तो वैकरिक मिश्र होता ही है, वहां मिश्र की बात नहीं आती। अभी बाकी बात कल करेंगे हम। नहीं नहीं उनके तो वायु का एक आदि की बात है। हाँ एक समय में नहीं होता है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। दोषी साहब।